भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। हमारे नासिक वैष्णव कैलेंडर में ये फेस्टिवल अब परमानेंटली दर्ज हो गया है। श्री श्री राधा माधव इनका आविर्भाव दिवस। आप लोगों में से कौन कौन हैं जो पहली दफा आए हैं आज, हाथ ऊपर कीजिए। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज जिनका उत्सव हम मना रहे हैं, श्री श्री राधा कृष्ण के अर्च विग्रह जिनका नाम है श्री श्री राधा माधव, और ये हमारे कलंत्री परिवार इनके घर के श्री विग्रह हैं, सौजन्य बंगला जहां पर इनका दर्शन हम में से बहुत से भक्त किए हैं। और यदि आप लोग जो नए आए हो, आप इनका दर्शन नित्य रूप से करना चाहोगे तो इनका मुख्य निवास स्थान सौजन्य बंगला वो कुलकर्णी गार्डन के पास। परंतु कृपावश गत कुछ वर्षों से वो अपना आविर्भाव दिवस मनाने के लिए अपने निजी निवास स्थान से बाहर आकर यहां हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। पिछले दो साल से और कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। 2005 में मुझे याद है श्रीमान जनानिवास प्रभु मायापुर के जो, और राधा गोपीनाथ मंदिर के भी जो हेड पुजारी हैं, वो विशेष आए थे श्री श्री राधा माधव इनकी प्रतिष्ठापना करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। और इसलिए इन अर्च विग्रहों का इतना सुंदर नाम श्री श्री राधा माधव, जो कि हमारे इस्कॉन के मुख्यालय के जो मुख्य अर्च विग्रह हैं मायापुर, उनका भी नाम है श्री श्री राधा माधव। तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कलंत्री परिवार इनका कि इतने बड़े पैमाने पर हर वर्ष ये श्री श्री राधा माधव इनका ये आविर्भाव दिवस मनाते हैं और हम सबको अनुमति देते हैं आध्यात्मिक प्रगति करने का। विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इतने सारे अर्च विग्रहों का दर्शन किया है, और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के हर एक रूप की एक विशेष सुंदरता, मनमोहकता होती है, परंतु श्री श्री राधा माधव व्यक्तिगत रूप से मेरा हृदय जीत लिए हैं एक प्रकार से, कि बहुत बहुत ही विशेष एक प्रेम उमड़ता है इनका दर्शन करने मात्र से। सही समय पे पर्दा खुला है। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की। आज का विशेष दिन गुड़ी पड़वा, जो कि हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार आज नव वर्ष प्रारंभ हुआ है। हालांकि भारत में नव वर्ष की शुभेच्छा तो लोग आजकल दे देते हैं 1 जनवरी 31 दिसंबर उस समय। परंतु हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार नववर्ष का अभिनंदन हमें आज के दिन देना चाहिए। चैत्र महीने का पहला दिन जो हमारे वैदिक कैलेंडर के महीने हैं उसका जो पहला महीना है उसका पहला दिन है आज। और ये दिन बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आज के दिन ब्रह्मा जी जिनको ये उत्तरदायित्व सौंपा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, और दूसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है ब्रह्मा जी को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं। सर्वप्रथम तप करने का और उसके पश्चात सृष्टि की रचना करने का। और बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान कहते हैं तो ब्रह्मा जी की शरणागति उसमें दिखाई गई है कि किंचित मात्र भी ब्रह्मा जी कोई रंज किए या कोई प्रश्न भी पूछे कि मैं क्यों, या इसे मैं क्यों करूं, कैसे करूं। और बहुत विशेष एक श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को आज के दिन सृष्टि की रचना इसका उत्तरदायित्व तो सौंप कर वो ब्रह्मा जी से हाथ मिलाए, हैंडशेक लिखा गया, लॉर्ड कृष्णा शुक हैंड्स विद ब्रह्मा जी। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा भद्रम ते, गुड लक। गुड लक इसलिए क्योंकि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को जब कुछ सौंपता है तो जानते हैं कि इसमें अब कितनी तकलीफें आएंगी इनको, इसलिए कह दिया भद्रम ते, हाथ मिलाते हुए कि मैं जा रहा हूं अपनी लीला करने, ऑल द बेस्ट। भगवान इस प्रकार से ब्रह्मा जी को कहे। तो उसमें यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा ब्रह्मा जी के ऊपर कि हाथ मिलाकर भद्रम ते कहकर भगवान चले गए। अब देखिए इस सृष्टि की रचना एक व्यक्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, हालांकि जो भी तत्व पदार्थ वो सब तो भगवान से मिले, परंतु फिर भी ये सृष्टि कितनी विशाल है, कितने सारे योनियों को बनाना, 84 लाख योनियों को बनाना, उनका उत्पादन, कितना ये कठिन कार्य है, कितना कठिन उत्तरदायित्व है। ये एक मनुष्य योनि लीजिए, इसके अंदर किस किस प्रकार के कर्मों के अनुसार किन किन को कैसा शरीर मिलना चाहिए, और हम तो केवल 4 लाख हैं, बाकी 80 लाख ऐसी ऐसी योनियां हैं कि हमने कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं होंगी। प्रकृति के नियम, अलग अलग प्रकार सृष्टि के कार्य, सृष्टि के तत्व, इनका निर्माण करना, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग इनका निर्माण करना, कितने सारे ब्रह्मांड ग्रह, सरोवर समुद्र नदियां आकाश जल वायु इत्यादि, क्या कुछ नहीं। तो उसकी शुरुआत हुई आज के दिन। इसलिए आप देखते होंगे कि आज के दिन लोग शुरुआत करते हैं किसी नई चीज की, कोई कोई बिजनेस चालू किया है, कोई यदि कोई मकान खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, तो आज के दिन शुभ माना जाता है। इसलिए देखिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ होता है सूर्योदय से। तो आज का ये जो गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है वो प्रारंभ होता है आज के सूर्य की पहली किरण से। और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें नव वर्ष शुरू होता है मध्य रात्रि अंधकार में, और उसमें भी लोग और अंधकार में जाते हैं दारू पी के, नशा कर कर। एक और विशेष प्रयोजन आज के दिन का यह है, आज के दिन प्रभु श्री राम का एक और तरीके से विजय उत्सव मनाया जाता है। रावण के ऊपर विजय, उसका उत्सव आज के दिन भी मनाया जाता है, राम विजय उत्सव। वाली, वाली के ऊपर प्रभु श्री राम की विजय, रावण के ऊपर प्रभु श्री राम की विजय, इसे बहुत धूमधाम से आज के दिन मनाया जाता है। इसलिए आज के हमारे प्रवचन में हम उसी पर अपना केंद्र रखेंगे, राम विजय उत्सव, क्योंकि हम गुड़ी पड़वा मना रहे हैं नासिक धाम में। तो नासिक धाम में प्रभु श्री राम का विजय उत्सव और उसके संदर्भ में हम क्या सीखते हैं ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ही शुभ है आज के दिन इसकी चर्चा करना। और आप लोगों को पता तो होगा कि आज के प्रवचन के पश्चात श्री श्री राधा माधव जी इनका पुष्प अभिषेक होने वाला है। कितने पेटल्स? 700 किलो पुष्पों की पंखुड़ियों की वर्षा होने वाली है केवल राधा माधव के ऊपर। तो आज का वो विशेष अंग है आज के कार्यक्रम का, इसलिए हम आज का जो दिन है गुड़ी पड़वा उसकी कुछ चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात आज का ज्यादा अधिकांश समय जो श्री श्री राधा माधव इनका पुष्प अभिषेक होगा इसके लिए रखा जाएगा। तो यदि आप के मन में कोई विचार है यहां वहां जाने का तो रुक जाइए, विशेष जो कार्यक्रम है आज का वो प्रवचन के पश्चात होगा। इसलिए कई बार भक्त बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाले बहुत चतुर हैं, जो विशेष कार्यक्रम होता है वो सब लेक्चर के बाद में रखते हैं ताकि लेक्चर सुनना ही पड़ता है। ये कार्यक्रम, सारे बाकी जो मन पसंदीदा कार्यक्रम हैं वो सब बाद में होते हैं। तो आज का जो दिन, जिस दिन इसको आज के दिन को कहते हैं शुक्ल चैत्र प्रतिपदा, प्रभु श्री राम, इनके विषय में बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपनी लीला की, हालांकि स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परंतु मर्यादा में रहते हुए, नियमों का कड़ा पालन करते हुए, और अपने हरेक पद पर, हरेक कदम पर प्रभु श्री राम ने हमें कितनी सारी शिक्षाएं दी हैं। तो आज हम प्रभु श्री राम, उन्होंने जो नासिक में लीला की, या उनके संदर्भ में जिन भक्तों ने और अभक्तों ने, दोनों ने नासिक में प्रभु श्री राम के साथ आदान प्रदान जो किया, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम इनसे जो नाम मिला है सूर्पनखा और रावण, तो नासिक में बहुत बड़ा योगदान रहा इन दोनों का इसे धाम बनाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान इन दोनों का भी रहा अलग दृष्टिकोण से, हालांकि अनुकूल भाव से नहीं प्रतिकूल भाव से। तो हम सब कितनी बार सुने हैं कि जब वनवास मिला सीताराम लक्ष्मण, वो अयोध्या छोड़कर चित्रकूट, चित्रकूट के पश्चात फिर जब यहां पंचवटी धाम आए, तो यहां पर हालांकि कोई आशंका नहीं थी उन्हें कि सीता का अपहरण होगा इस तरीके से यहां पर नासिक में। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सीता देवी का अपहरण, इसके पीछे क्या कारण थे और किस प्रकार से सीता देवी का अपहरण हुआ। और हमारी साधना भक्ति में अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी जो भक्ति है वो माता सीता उनका प्रतीक है, जो कि रावण द्वारा चुराई गई है। रावण ने सीता देवी को कहां चुराया, कहां चुराया, जोर से थोड़ा, नासिक पंचवटी, नासिक में, यहां पर जहां पर हम बैठे हुए हैं, इस पूरे क्षेत्र को बोल रहा हूं मैं। तो सीता देवी का अपहरण यहां पर हुआ। और यदि हम देखें तो रावण सीता देवी के प्रति इतना आकर्षित नहीं था, कब तक, जब तक सूर्पनखा ने सीता देवी के विषय में रावण को नहीं बताया था। रावण कहां का रहने वाला, लंका, लंका का रहने वाला लंकेश, ये रावण वहां पर इतने अनगिनत उसकी जो पटरानियां और सोने की लंका, स्वर्णिम लंका में ये पूर्ण ऐशो आराम में ये जीता हुआ अचानक यहां क्यों आया, ये भी प्रश्न है ना। वो सब छोड़कर यहां पर पंचवटी में क्यों आया, वो भी साधु का वेश धारण कर और वो भी सीता देवी का अपहरण करने, जो कि एक वनचारी की पत्नी बन चुकी थी, प्रभु श्री राम जो कि अब वनचारी बन चुके थे, उनकी पत्नी, वन में रहने वाली एक महिला, क्यों रावण सब कुछ छोड़कर यहां पर आए, जानना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम रावण की बहन की चर्चा करते हैं सूर्पनखा, कि वो प्रभु श्री राम के सौंदर्य को जब देखती है तो उसके मन में प्रेम जागृत नहीं होता, उसके विपरीत काम वासना, उसके विपरीत काम वासना जागृत होती है और वो प्रभु श्री राम के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करती है एक कामुक स्त्री की तरह। तो सूर्पनखा वो प्रभु श्री राम के प्रति कामुक बन गई। यहां पर यह समझ में आता है कि इस भौतिक संसार की काम वासना कितनी तीव्र हो सकती है कि इस भौतिक संसार के जो कामुक वस्तुएं हैं उनको तो छोड़ दीजिए, यदि कोई प्रभु श्री राम को देखते हुए काम वासना उसके अंदर जागृत हो रही है तो इस भौतिक संसार की काम वासना कितनी गहरी होगी। अब प्रभु श्री राम जैसे निष्पाप, जैसे निष्पाप प्राणी, जैसे निष्पाप मनुष्य, जैसे निष्पाप भगवान, इनको देखकर यदि किसी के अंदर काम वासना जागृत हो रही है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सूर्पनखा इसके मन में वो काम कितने प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। अब हम जानते हैं कि उसने जब प्रभु श्री राम को ये प्रस्ताव दिया कि मैं विवाह करना चाहती हूं आपसे, तो प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर कहते मैं तो पहले से विवाहित हूं, मेरी पत्नी, एक पत्नी व्रत मैंने लिया है, तो आप आपने रॉन्ग नंबर डायल किया। तो बहुत नम्रता से प्रभु श्री राम समझा रहे थे सूर्पनखा को, और मायूस नहीं करना चाहते थे तो कह दिए। प्रभु श्री राम भी देखिए, जिनके विषय में हर समय हम ये पढ़ते हैं कि एकदम सीरियस इनकार्नेशन है प्रभु श्री राम, जो भी उन्होंने किया सब गंभीरता से किया, परंतु यहां नासिक में प्रभु श्री राम ने थोड़ा विनोद किया। तो वो सूर्पनखा को कहते हैं कि ये जो मेरा छोटा भाई है ये यहां पर ऐसे ही अकेला आया है, और तुम जाओ थोड़ा, मेरे छोटे भाई जो है लक्ष्मण उसे ये प्रस्ताव रखो। तो अब सूर्पनखा जाती है लक्ष्मण के पास। अब लक्ष्मण समझ गए कि प्रभु श्री राम ये आज थोड़े विनोद के मूड में है, थोड़े जोक करने के मूड में, तो वो भी प्रभु श्री राम के साथ जोक करने लगे। तो सूर्पनखा को लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई तुम यदि मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हें फिर इनकी दासी बनना पड़े, सीता देवी की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें, और क्योंकि सीता देवी उनकी पत्नी है, मैं प्रभु श्री राम का दास, तो तुम यदि मेरी पत्नी बनोगी तो सीता की दासी बनना पड़ेगा। ये ठीक है, ये ठीक नहीं ना, तो जाओ जाओ फिर से जाओ और फिर से अपना प्रस्ताव वहां पर रखो। तो यहां पर अब सूर्पनखा वो मानो फुटबॉल की तरह यहां वहां फेंकी जा रही थी, तो उसे आ गया क्रोध, ये क्या चल रहा है, क्योंकि बहन किसकी थी, रावण की, तो उसे आ गया क्रोध। और उस समय फिर लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस क्षेत्र को एक नया नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, नासिक। और वो नासिक नाम कैसे दिया उन्होंने, सूर्पनखा की नाक काटकर। अब नाक कटी, उसके कान कटे, ये नाक कटी सूर्पनखा जाती है कहां, रावण के पास, और रावण के पास जाकर सीता देवी के सौंदर्य का गुणगान करती है और कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम सबसे ऐश्वर्यशाली हो, कि तुम्हारे पास सारे ऐश्वर्य हैं, सबसे सुंदर स्त्रियां तुम्हारे पास है पत्नी के रूप में, अरे तुमने सीता, ये सीता की सुंदरता तुमने देखी नहीं है, और एक साधारण मनुष्य, एक वनचारी, वो इतने सुंदर सीता का पति बना हुआ है, तुम यहां पर क्या बैठे बैठे कर रहे हो, नींद मार रहे हो। तो सीता देवी के सौंदर्य का वर्णन ये सूर्पनखा करती है, और केवल सौंदर्य सुनने मात्र से रावण के अंदर सीता देवी के प्रति काम वासना जागृत होती। तो देखिए दोनों भाई बहन, सूर्पनखा के मन में काम वासना जागृत हुई राम के प्रति, और रावण के मन में सीता देवी के प्रति। इसमें एक और शिक्षा ये मिलती है कि रावण के अंदर जो काम वासना जागृत हुई वो सूर्पनखा से ज्यादा तीव्र थी। हालांकि रावण ने सीता देवी को आंखों से देखा नहीं था, केवल कानों से सुना था। तो ये समझ में आ रहा है कि श्रवण की विधि कितनी शक्तिशाली है, कि रावण ने श्रवण किया और वो भी किसके मुख से, इस शूर्पणखा के मुख से श्रवण किया। तो ये हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि रावण जैसा राक्षस उसकी राक्षसी बहन के मुख से सीता देवी और प्रभु श्री राम के विषय में श्रवण कर वो लंका छोड़कर सीता देवी और प्रभु श्री राम से संपर्क स्थापित करने के लिए आ सकता है, यदि प्रतिकूल भाव से ही सही, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि हम प्रामाणिक सूत्रों से प्रभु श्री राम और सीता देवी के विषय में श्रवण करें तो हमारे मन में क्यों नहीं वो दिव्य प्रेम जागृत होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण करना, भगवान के विषय में, सीताराम के विषय में श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। कौन सिखा रहा है? शूर्पणखा और रावण, ये दोनों सिखा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इस भौतिक संसार में हमारी भी दशा शूर्पणखा की तरह है। विशेष रूप से भारत में अक्सर धर्म का पालन व्यक्ति कर रहे हैं अपनी काम वासना को संतुष्ट करने के लिए, अपनी काम वासना को संतुष्ट करने के लिए धर्म का पालन किया जा रहा है। धर्म अर्थ काम, कि वो धर्म का पालन किया जा रहा है ताकि अर्थ मिले। अर्थ किस लिए? काम वासना के लिए। इसलिए विशेष हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति छोड़कर प्रभु श्री राम से कौन सा काम मिल सकता है, या अध्यात्म से क्या कुछ मुझे मेरे इंद्रिय भोग के साधन मिल सकते हैं, यही विशेष प्रयोजन रहता है। इसलिए यह बताया गया है कि कलयुग में लोग अध्यात्म का पालन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ये बताया गया है कि कुंभ मेले में या इस प्रकार के बड़े बड़े उत्सवों में करोड़ों की संख्या में इतने सारे क्यों पाए जाते हैं। एक में वो विशेष कारण ये है कि अंदर की जो इंद्रिय भोग की इच्छा है उसे किसी न किसी प्रकार से बनाए रखें। यदि अध्यात्म को इस्तेमाल करते हुए वो बनाए रखा जाएगा तो अध्यात्म को इस्तेमाल करेंगे। यदि संगम में स्नान कर मेरे पाप धुलकर मेरा इंद्रिय भोग बरकरार रहेगा तो वही सही। इसलिए कई बार ये दुर्भाग्यवश देखा जाता है कि इतने सारे मंदिरों में इतने सारे लोग जा रहे हैं परंतु वहां पर भगवान से कुछ मांगने के लिए केवल ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जैसे होटल में जाता है कोई, तो होटल में जाकर वो ऑर्डर देता है कि एक पाव भाजी जल्दी बोलता है ना, तो वैसे ही मंदिर में आते हैं कि ये गाड़ी ये बंगला ये नौकरी जल्दी बोल देते हैं, वो भी जल्दी चाहिए। तो भगवान को ऑर्डर सप्लायर बना दिया जाता है। इसलिए आज का विशेष उत्सव ये है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हम पुष्पों की वर्षा भगवान के ऊपर करने वाले हैं और वो भी कितने पुष्पों की वर्षा, सैकड़ों, 700 किलो जितना हमारा प्रेम बन पा रहा है उतना इकट्ठा कर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इसलिए भगवान ये श्लोक भगवद गीता में क्यों कहें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। भगवान आ आ के ऐसे श्लोक बोल बोल कर हमें प्रेरित कर रहे हैं कि केवल मुझसे मांगो मत, कुछ दो। और क्या चाहिए भगवान को? भक्ति। भगवान बिना मांगे तो दे ही रहे हैं हमें। हम जो वायु, जो सांस ले रहे हैं, हम जो जल पीते हैं, अन्न खा रहे हैं, ये सब कुछ भगवान बिना मांगे तो हमें दे ही रहे हैं। परंतु भगवान चाहते हैं कि इसके बदले में कुछ, ये सारे जो जीव हैं इस भौतिक संसार में, मुझे कुछ अर्पित करें। और वो क्या? भक्ति। तो भगवान ने कह दिया कि सबसे साधारण से साधारण वस्तु, उसके द्वारा अपनी भक्ति अर्पित कर दो। और वो वस्तु भी मैंने निर्माण की है। कौन सी वस्तुएं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब भगवान स्वयं उन्होंने निर्माण किया। तो वो ही निर्माण कर हमें दे रहे हैं, कहें कि केवल भक्ति के साथ इसे अर्पित करो। वो चाहते हैं। हमारे एक मुंबई के ब्रह्मचारी हैं, उनके पिताजी ने अपने दोनों पुत्रों को इस्कॉन का ब्रह्मचारी बना दिया। तो अब उनको जब पूछा गया कि भाई ऐसा कैसा है, आप दोनों अपने लड़कों को ब्रह्मचारी बना दिया इस्कॉन में, तो बहुत ही दिलचस्प उनके जीवन की ये घटना कि उन्होंने तो कहा कि मैं खुद भी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन लेट हो गया, अभी एज लिमिट चला गया। लेकिन उससे ज्यादा वो कहे कि वो भगवद गीता पढ़ना शुरू किए थे, तो भगवद गीता का एक श्लोक उन्होंने पढ़ा, जो जिसकी चर्चा हमने की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक उन्होंने पढ़ा। तो संस्कृत वगैरह इतना जानते नहीं थे ठीक से, तो वो इस श्लोक को बार बार पढ़ रहे थे, पुत्रम पुष्पम। वो पत्रम है तो पुत्रम पुष्पम। तो उनको लगा कि भगवान पुत्र मांग रहे हैं, तो ये उनके मन में बात बैठ गई, यदि भगवान पुत्र मांग रहे हैं तो एक क्या, दो दूंगा मैं। सोचिए, तो भगवान इन श्लोकों के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं कि हम जिस कार्यक्रम के लिए भौतिक संसार में आए हैं, कौन सा कार्यक्रम? सूर्पणखा का कार्यक्रम, कि भगवान के ऐश्वर्य का भोग करना। और फिर यहां पर आने के पश्चात रावण, जो कि काम वासना का प्रतीक, जो कि सीता देवी का भोग करना चाहता है राम से अलग सीता को कर। तो जब हम केवल प्रभु श्री राम की जो अर्धांगिनी है, प्रभु श्री राम की जो अंतरंगा शक्ति है, उसका भोग जब हम करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी, है ना, उसको कहते हैं लक्ष्मी। तो उस लक्ष्मी का जब हम भोग करना चाहते हैं, तो वो प्रवृत्ति है, केवल लक्ष्मी का भोग करने की प्रवृत्ति है रावण की। और हनुमान जी और लक्ष्मण इत्यादि, ये जो सीताराम को हर समय मिलाए रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जब लक्ष्मी नारायण की सेवा एक साथ की जाती है, तो वो है भक्ति की भावना। तो ये दो, सूर्पणखा और रावण, हमारी साधना भक्ति में हम अनुभव करते हैं किस प्रकार से हम आए हैं, जिस कारण के वजह से इस भौतिक संसार में इनकी वृत्तियां लेते हुए, रावण और सूर्पणखा की। और इन दोनों को ठीक करने के लिए लक्ष्मण और जटायु, तो यदि हम देखें सूर्पणखा के साथ सूर्पणखा का दुर्व्यवहार ठीक करने के लिए लक्ष्मण जी और रावण को रोकने के लिए जटायु, तो ये दो भी नासिक धाम में ही इन्होंने अपनी भक्ति दिखाई, अपनी सेवा भाव उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति दिखाया। तो इसी नासिक क्षेत्र में हम सीखते हैं कि गलतियां क्या हो सकती हैं और गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है इन चारों से। कौन चार? ये चार। तो राम विजय उत्सव का अर्थ क्या है? राम विजय उत्सव का अर्थ है हमारे हृदय में जो काम है, सूर्पणखा और रावण रूपी जो काम वासनाएं हमारे हृदय में है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कैसे करें, वो है राम विजय उत्सव, आज का जो दिन। तो लक्ष्मण और जटायु, इन दोनों ने जो अपनी सेवा से इनके ऊपर विजय प्राप्त की, इससे हमें यह समझ में आता है, एक एक सुंदर श्लोक है रामायण का जिसकी हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि वास्तविक धन किसी भक्त का क्या होता है, विशेष रूप से लक्ष्मण जी इनके विषय में बताया गया है। ये सुंदर श्लोक है रामायण का जिसमें कहते हैं, सर्वप्रिय करतस्य रामस्य पि शरीरत लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। सर्वप्रिय करतस्य, लक्ष्मण जी के विषय में बताया गया है कि लक्ष्मण जी को सबसे प्रिय, उनके पूरे जीवन में सबसे प्रिय लक्ष्मण जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रभु श्री राम की सेवा। अब देखिए इस भौतिक संसार में लोग प्राणों से कितना प्रेम करते हैं, चाहे बाकी कुछ भी छूट जाए ये प्राण न छूटे, वचन छूट जाए प्राण न छूटे, उल्टा। परंतु लक्ष्मण उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि उनको सबसे प्रिय कौन, रामस्य अपि शरीरतः, प्रभु श्री राम की शारीरिक सेवा, प्रभु श्री राम की शारीरिक सेवा वो सबसे प्रिय लक्ष्मण को। और फिर यहां पर उनके नाम की व्याख्या की गई है श्लोक में कि लक्ष्मण जी, इनको ये नाम लक्ष्मण जी क्यों मिला, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। उनके आंतरिक प्राण और बहिर्प्राण क्या है? ये लक्ष्मी, जैसे कि नीति में कहा गया है कि एक होता है हमारा आंतरिक प्राण, हमारे हमारा आंतरिक प्राण कौन है? आत्मा। और कहा गया है बहिर प्राण क्या है? धन दौलत, उसे बहिर प्राण कहा गया है कि ये बहिर प्राण के वजह से ये आंतरिक प्राण शरीर के साथ टिका हुआ रहता है। तो यहां पर लक्ष्मण, इनको ये नाम मिला लक्ष्मण क्योंकि इनके पास कौन सी लक्ष्मी थी। यहां पर कहा गया है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न। अब यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहां पर एक विरक्त का जीवन, एक जटाधारी वनचारी का जीवन ये लक्ष्मण जी रहे हैं, अयोध्या के सारे ऐश्वर्य को छोड़कर, यहां तक कि वो अपनी नवविवाहिता पत्नी को भी छोड़कर आ गए लक्ष्मण अकेले, यहां पर नंगे पैर ऊपर जटा धारण किए हुए, वलकल वस्त्र धारण किए हुए और कंदमूल केवल खाते हुए, कौन सी लक्ष्मी इनके पास? ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई कौन सी लक्ष्मी से संपन्न, तो बताया गया है लक्ष्मण जी की एकमेव संपत्ति या लक्ष्मी जिससे वो संपन्न, वो कौन सी? प्रभु श्री राम की सेवा। तो यदि हमें राम विजय उत्सव मनाना है, रावण शूर्पणखा के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो लक्ष्मण के जैसा बनना है। और जटायु किससे संपन्न? लक्ष्मी से संपन्न। कौन सी लक्ष्मी से संपन्न? प्रभु श्री राम की सेवा। रामायण में लक्षण, कुछ लक्षण बताए गए हैं कि लक्ष्मण और जटायु इनका जो सेवा भाव था सीताराम के प्रति, उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। सर्वप्रथम स्नेह, उसके पश्चात विनम्रता, उत्साह, कर्मठ प्रयास और निरपेक्ष सेवा। कि जब तक हम ये लक्ष्मी अर्जित नहीं करते हमारी साधना भक्ति में, तब तक शूर्पणखा और रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब लक्ष्मण जी, हम भी सेवा करते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम सेवा नहीं कर रहे या सेवा हमने कभी नहीं की, परंतु सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए ये लक्ष्मण और जटायु सिखा रहे हैं। सर्वप्रथम सेवा में स्नेह होना चाहिए। स्नेह को यदि हम अंग्रेजी में अनुवादित करें तो उसे कहेंगे अफेक्शन। यदि हम जप कर रहे हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, प्रचार की सेवा कर रहे हैं, जो भी कुछ सेवा कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हम सेवा स्नेह से कर रहे हैं या वो सेवा मन मार कर की जा रही है, बस करनी है, किसी न किसी प्रकार से हाजिरी लगा दो और हो जाए कुछ, तो बस लोगों को लगे कि किया मैंने कुछ, तो नहीं। इसलिए स्नेह को संस्कृत में कहते हैं घी। एक और अर्थ स्नेह का, संस्कृत का जो शब्द है स्नेह, इसका एक और अर्थ है घी। बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि हम यदि सेवा स्नेह से नहीं कर रहे तो घी से इसका क्या संबंध है? तो क्या प्रसाद नहीं मिलेगा घी में बना हुआ, या घी में बना हुआ हलवा नहीं मिलेगा? नहीं। यहां पर यह बताया गया है कि हमारा शरीर जो है वो बाती के समान है। भगवान को दीप हम अर्पित करते हैं तो बाती जलाई जाती है, तो बाती जलती कैसे है? किसके कारण? स्नेह। स्नेह के कारण वो बाती जलती रहती है, अर्थात घी उसमें होता है, ओतप्रोत घी से वो बाती रहती है। और जब वो बाती जलती है तो घी नहीं दिखता जलते, वास्तविक रूप में जल क्या रहा है? वो घी जल रहा है, वो स्नेह जल रहा है। आपने कभी इसका अनुभव किया है, बिना घी के बाती को जलाओ तो है क्या? रुई है केवल, और रुई को यदि आप जलाओगे तो बिना घी के, बिना स्नेह के जब वो बाती जलती है तो कितने समय तक वो जलती रहेगी? बस एक आधा मिनट और वो अग्नि उसे खत्म कर देगा। तो उसी प्रकार से यदि हम प्रभु श्री राम की सेवा में लगना चाहते हैं बिना स्नेह के, तो उसी प्रकार है जैसे कि बाती जल रही है बिना घी के, कितने समय वो सेवा हो पाएगी? इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है, लक्ष्मण जी से ये सीखना, जटायु से ये सीखना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जटायु। कि जटायु जी को किसी ने कहा नहीं था कि सीता को बचाओ, किसी ने उनको ये सेवा लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला था। कई बार हमको जब बार बार फोन कर कर या नोटिस बोर्ड में हमारी सेवा लिस्ट में नाम डाला जाता है तब जाकर मुझे ये सेवा दी गई है, शू स्टैंड की सेवा या फिर जो भी प्रसादम कूपन की सेवा, प्रसादम सर्विंग की सेवा। तो जटायु इन्होंने स्नेह से अपने से प्रभु श्री राम को ध्यान में रखते हुए सीता देवी की सेवा करते हुए रावण के साथ युद्ध किया, और वो भी कौन सी अवस्था में, अपनी वृद्ध अवस्था में। तो यहां पर उत्साह जो बताया गया है वो इतना इतना जटायु में देखा गया उत्साह, कि अपनी वृद्ध अवस्था में जब जटायु उड़ भी नहीं पा रहे थे ठीक से, उस अवस्था में उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस, और ये केवल एक पक्षी, जटायु एक पक्षी के रूप में थे। और रामायण में बताया गया है कि जब दोनों का युद्ध छिड़ा तो रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए, जटायु के दोनों पंख कटे हुए, और कटे हुए दोनों पंख उस शरीर से भी जटायु अपनी चोंच से लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि भाई अब तो राम की सेवा में ये सब कुछ मिल रहा है तो जाओ भाड़ में जाओ, स्नेह उत्साह इतना कि यदि सब कुछ कट भी जाए परंतु मैं अपना कर्मठ प्रयास, ये जो गुण है हार्ड वर्क, वो जटायु ने छोड़ा नहीं। और यदि हम देखें तो भगवान श्री राम के पार्षदों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जटायु को माना गया है। जटायु को इसलिए माना गया है क्योंकि एक तो जटायु और मारीच, इनकी तुलना की गई है कि मारीच जो है वो हालांकि प्रभु श्री राम के हाथों मरा परंतु वो सेवा रावण की कर रहा था, और हालांकि उसके मुख से राम का नाम निकला मरते समय परंतु मन में धारणा क्या थी, किसकी सेवा वो कर रहा था, रावण की, ये मारीच। और जटायु हालांकि रावण के हाथ जटायु मरे परंतु प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए वो मरे। दोनों में अंतर किसका है कि आंतरिक भाव से सेवा किसकी हो रही थी। इसलिए प्रभु श्री राम के पार्षदों में जटायु का इतना गुणगान हुआ है कि प्रभु श्री राम, जटायु अब जब उस अवस्था में मरने कुछ चंद सांसें उनकी बाकी रह गई थी तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे सीता के हरण का वियोग इतना नहीं है जितना जटायु के निधन का है। और अपने हाथों से प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब इससे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है जो कि प्रभु श्री राम की सेवा में अपने प्राण त्यागे और स्वयं प्रभु श्री राम जिनका अंतिम संस्कार करें इसी नासिक धाम में। तो ये हैं जटायु, इनका स्नेह, इनका उत्साह, इनका कर्मठ प्रयास और निरपेक्ष सेवा दोनों की, लक्ष्मण और जटायु दोनों। लक्ष्मण जी के विषय में बताया गया है कि उनकी निरपेक्ष सेवा, निरपेक्ष सेवा का अर्थ है उस प्रकार की सेवा जिसमें कोई अपेक्षा न रहे कि बदले में क्या मिलेगा, जिसमें कोई अपेक्षा। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की सेवा इसलिए नहीं कर रहे थे कि 14 वर्ष के पश्चात फिर कुछ प्रोविडेंट फंड मिलेगा, या हर महीना कुछ तनख्वाह मिलेगी। यहां तक कि जब सीता देवी का अपहरण करने रावण आया साधु का भेष लेकर, उससे पहले मारीच जब प्रभु श्री राम की आवाज में पुकारता है, क्या हे सीते हे लक्ष्मण जब पुकारता है, और उस समय लक्ष्मण जी जानते हैं कि प्रभु श्री राम की आवाज नहीं है, सीता देवी वो लक्ष्मण पर आरोप लगाती है कि मैं जानती हूं कि तुम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि तुम मेरा भोग करना चाहते हो। ऐसे कटु शब्द, ऐसी कठोर वाणी, लक्ष्मण जी को ये सब कुछ सुनना पड़ा। तो लक्ष्मण जी सीता देवी के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुने और सीता देवी को वहां पर अकेला छोड़कर जब वो गए तो प्रभु श्री राम ने डांटा। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैंने तुमको कहा था कि सीता को छोड़ना मत अकेला। तो यहां पर सीता देवी वो लक्ष्मण जी के चरित्र पर प्रहार की ये बोलते हुए कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। सो लक्ष्मण्स कैरेक्टर वॉज चैलेंज्ड बाय सीता देवी एंड लॉर्ड राम ही डाउटेड लक्ष्मण्स कॉम्पिटेंस। सोचिए एक सेवक के लिए यही दो चीजें हैं, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस, उसका चरित्र और उसकी काबिलियत सेवा करने की। लक्ष्मण जी, और वो भी किसके मुख से सुनना पड़ा, जिनकी सेवा वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अधर्मी या कोई राक्षस ये लक्ष्मण को ये सब कुछ कह रहे थे, कौन, राम और सीता, जिनकी सेवा वो इतने निस्वार्थ भाव से वहां पर कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर। यहां पर पंचवटी में जब वो पहुंचे तो लक्ष्मण जी उन्होंने पर्णकुटी बनाई और इतने भक्ति भाव से उन्होंने पर्णकुटी बनाई सीताराम के लिए। 14 वर्ष इस व्यक्ति ने एक आंख नींद की नहीं ली, 14 वर्ष बिना सोए प्रभु श्री राम और सीता देवी की सेवा इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने की। और ये सेवा करने के पश्चात फिर क्या सुनने को मिल रहा है, सीता देवी के मुख से सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा चरित्र कलंकित है, और प्रभु श्री राम से कि तुम्हें मैं वहां पर छोड़कर आया था, तुम डर के आ गए यहां पर भागकर। सो हिज कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस वर डाउटेड बाय सीता एंड राम। और ये इसलिए कि हम सबको बताने के लिए कि लक्ष्मण जी की वास्तविक लक्ष्मी क्या है, निरपेक्ष सेवा, कोई अपेक्षा नहीं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। यही भाव लक्ष्मण जी का यहां पर देखा गया है। तो जब तक हमारी सेवा में स्नेह, विनम्रता जिसको संस्कृत में किंकरता कहते हैं, किंकरता या किंकर का अर्थ है किम कर, मैं क्या करूं आपके लिए। लक्ष्मण जी वो 14 वर्ष हर क्षण तत्पर रहते थे केवल प्रभु सीताराम इनकी सेवा करने के लिए। और यही आदेश उनकी माता ने उनको दिया था। उनकी माता ने यही आदेश देते हुए लक्ष्मण जी को भेजा था सुमित्रा देवी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि तुम जा तो रहे हो परंतु मेरा ये एक आदेश सुनते हुए जाओ। बहुत ही विशेष आदेश उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि प्रभु श्री राम और सीता इनके श्रीमुख को मत देखना। आप पूछोगे क्यों भाई, प्रभु श्री राम के सुंदर मुखड़े को क्यों नहीं देखना। सुमित्रा ये कहती हैं कि यदि तुम प्रभु श्री राम के सुंदर मुखड़े को देखोगे तो तुम्हारी नजर हट नहीं पाएगी उनकी सुंदरता से। इतने सुंदर हैं ये, इतने सुंदर है कि तुम्हारी नजर हट नहीं पाएगी, और तुम्हारी नजर यदि वहां से हटेगी नहीं तो सेवा कैसे कर पाओ। तो वो लक्ष्मण जी के अंदर कूट कूट कर ये एक संदेश भरना चाहती थी कि तुम जा रहे हो केवल सेवा करने के लिए, उनका भोग करने के लिए नहीं, उनकी सुंदरता का भी भोग करने के लिए नहीं जा रहे। देखिए ये भक्ति का कितना ऊंचा स्तर है कि केवल सीताराम को आनंद मिले, वही जीवन का सर्वस्व। तो लक्ष्मण जी और जटायु नासिक में इन्होंने शूर्पणखा और रावण और वो जिनके प्रतीक थे उनके ऊपर विजय उन्होंने प्राप्त किया अपने सेवा भाव के द्वारा। परंतु कौन सा, किस प्रकार का सेवा भाव, जो स्नेह के द्वारा, जो कि उत्साह के द्वारा, जो कि विनम्रता के द्वारा, कर्मठ प्रयास करते हुए। कई बार लोग बहुत बोलते हैं सेवा के विषय में, परंतु करने जब करने का मौका आता है तो बहुत से बहाने सामने आ जाते हैं। तो यहां पर 14 वर्ष बिना सोए एक ऐसा वनचारी का जीवन बिताए हुए निरपेक्ष सेवा जो लक्ष्मण जी ने की और जो जटायु ने की, उससे हमें सीखना है। और फिर रामायण में बताया गया है कि ये जो शुद्ध सेवा जिसके द्वारा हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी तीन आवश्यकताएं। सबसे पहले उसे कहा गया है भावज्ञेन वो सेवा होनी चाहिए, कृतज्ञेन और धर्मज्ञेन, इस प्रकार की वो सेवा होनी चाहिए। भावज्ञेन का अर्थ है हमारी भावना के साथ, विथ कॉन्शियसनेस, केवल शारीरिक रूप से नहीं परंतु भावना के साथ वो सेवा करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने जब वो पर्णकुटी यहां पर बनाई सीताराम के लिए, तो रामचंद्र जी और सीता देवी इनको बताना नहीं पड़ा लक्ष्मण जी को कि वो पर्णकुटी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर उनका प्रयोजन था कि वो यहां पर ही 14 वर्ष बिताना चाहते थे। अब वो तो सीता देवी का अपहरण हो गया, उसके पश्चात ये छोड़कर फिर उनको आगे जाना पड़ा। परंतु ऐसी पर्णकुटी जिसमें आपको 14 वर्ष बिताना है, तो कम से कम राम और सीता कुछ तो बताते कि क्या पर्णकुटी कैसी होनी चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए, फर्नीचर वगैरह जो भी जंगल का कहां पर कहां लगना चाहिए। रामायण में बताया गया है कि बिल्कुल कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसे सेवक थे कि वो राम और सीता का भाव जानते थे, और उनके भाव को जानते हुए उन्होंने वो पर्णकुटी बनाई। तो इसे कहते हैं भावज्ञेन। तो जब भगवान की सेवा इस प्रकार की भावना से हो कि जब हम भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे हैं, चाहे घर में बना रहे हो चाहे मंदिर में बना रहे हो, तो वो भोग बनाते समय धारणा लक्ष्मण जी की जैसे होनी चाहिए जब उन्होंने पर्णकुटी बनाई। वो एक एक जो बांबू लगा रहे थे उसके ऊपर जो पत्ते घास इत्यादि पर्णकुटी पर लगा रहे थे, एक एक वस्तु को लगाते समय मन में क्या सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम और सीता को ये कैसे आनंद देगा ये पदार्थ, ये वस्तु। इसे कहते हैं भावज्ञेन। कृतज्ञेन का अर्थ है जब भावना के साथ, कई बार हां भावना बहुत अच्छी होगी परंतु उसके साथ काबिलियत, कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। तो अब ये प्रश्न कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि लक्ष्मण ने इतनी सुंदर पर्णकुटी, जब प्रभु श्री राम ने वो पर्णकुटी को देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि लक्ष्मण ने अकेले इतनी सुंदर पर्णकुटी बिना किसी की सहायता के केवल जंगल की वस्तुओं को लेते हुए कैसे बनाई। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि भावना के साथ कुशलता, लक्ष्मण जी की कुशलता। तो लक्ष्मण जी के विषय में बताया गया है कि बचपन से, जब अयोध्या में, बचपन में लक्ष्मण अयोध्या में जो भी कुछ निर्माण कार्य चलता, कंस्ट्रक्शन, लक्ष्मण जी वहां बचपन में जाकर ध्यान से देखते कि कैसे कुछ चल रहा है। खेल खेलना मिलना कुछ नहीं, बचपन से वो केवल ये देखते रहते कि कहां पर कौन सी वस्तु मैं सीखूं, नई नई वस्तुएं किसके लिए, प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए। तो बचपन से उनका एक स्वप्न था कि वो प्रभु श्री राम के लिए एक बड़ा महल बनाना चाहते थे, इसलिए बचपन से जहां पर भी अयोध्या में कुछ महल कहीं बन रहा होता, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट, वहां पर जाके खड़े होके देखते रहते कि कैसे करते, सीखते रहते बचपन में लक्ष्मण जी। और वो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि बचपन में मैंने ये जब कुछ जो कुछ सीखा वो अकेले अब नासिक में पंचवटी में जब उन्होंने पर्णकुटी बनाई तो इस्तेमाल किया। तो इससे लक्ष्मण जी क्या सिखा रहे हैं कि इस भौतिक संसार को देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अक्सर जब हम किसी बंगले को देखते हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ अच्छा कुछ बन रहा है उसको देखते हैं तो मन में क्या, मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए, काश मेरा भी एक ऐसा ही बंगला हो, न्यारा, सबसे प्यारा। परंतु यहां पर लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं कि दृष्टि क्या होनी चाहिए। वो देखते थे, सीखते थे प्रभु श्री राम की सेवा के लिए। इसलिए बहुत से हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में भक्त वो बहुत सी नई नई वस्तुएं सीखना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने हेतु, कि कोई ऐसी वस्तु, कोई नया व्यंजन है। बहुत से हमारे भक्त हैं वो नए नए व्यंजन जा जाकर सीखते हैं। हमारे मुंबई में हमारा जो किचन टीम वहां का है, वहां के हमारे जो कुछ ब्रह्मचारी भक्त हैं वो बड़े बड़े होटलों के किचन को जा जाके सीख रहे हैं कि वो लोग किचन कैसे मैनेज करते हैं। हमारे एक भक्त हैं राधा वल्लभ प्रभु, उन्होंने 3 महीने का कोर्स लिया किचन मैनेज करने, किस लिए, अब वो ब्रह्मचारी है उनको किचन किस लिए मैनेज करना है, किसके लिए, राधा गोपीनाथ के लिए। कि ऐसे ऐसे जगहों में जा जाकर, और राधा वल्लभ प्रभु इटली गए, वहां पर जाकर नए नए इटालियन व्यंजन सीख कर आए, राधा गोपीनाथ और भक्तों को कैसे वो अर्पित करें वो सेवा, इतने दूर दूर जा जाकर सीख सीख कर आए वो। तो लक्ष्मण जी यहां पर बता रहे हैं कि भावज्ञेन के साथ साथ एक भक्त को, एक सेवक को कृतज्ञेन, अलोंग विद द कॉन्शियसनेस वन शुड बी कॉम्पिटेंट, और धर्मज्ञेन कैरेक्टर, कि वो जो पर्णकुटी उन्होंने, ये पर्णकुटी का ही उदाहरण एक केवल काफी है जानने के लिए, ये जो तीन गुण इनके। तो ये पर्णकुटी बनाने के पश्चात इसी नासिक क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता, वो जब पर्णकुटी में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, यहां पर हम, आपको नहीं लगता ये हम तीनों के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तीनों के लिए? तीन कौन? प्रभु श्री राम कहते हम तीन। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं प्रभु आपने मुझे इतना ओछा समझा है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा, ये मेरे लिए, मैं इसमें नहीं रहने वाला, मैं तो बाहर सोऊंगा, ये केवल आप दोनों के लिए मैंने बनाया। प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आ गए जब उन्होंने लक्ष्मण जी धर्मज्ञेन सेल्फलेस कि मैं आपके लिए दोनों के लिए बनाया हूं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ना, प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो पिताजी हैं वो गुजरे नहीं है मेरे, तो कौन? दशरथ। तब तक महाराज दशरथ वो गुजर गए थे। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरे पिताजी दशरथ गुजरे नहीं हैं, क्योंकि वो तुम्हारे रूप में आए हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सब प्रयोजन कर कर देता है, तो वो लक्ष्मण को अपने पिता रूप मान रहे थे। कौन? प्रभु श्री राम। लक्ष्मण जी का ये जो गुण धर्मज्ञेन का, इसलिए जटायु और लक्ष्मण इन्होंने अपनी सेवा से, जटायु इनका उदाहरण यदि हम फिर से लें तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि भौतिक दृष्टिकोण से फेलियर स्टोरी है। फेलियर स्टोरी, लोग सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं ना। इस भौतिक संसार में लोग केवल कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? सक्सेस स्टोरी बुक्स। और रामायण में जटायु का उदाहरण क्या है कि जो भौतिक दृष्टिकोण से असफल रहे। जटायु वॉज अ फेलियर, ही कुंट प्रोटेक्ट सीता। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, प्रभु श्री राम के दृष्टिकोण से जटायु, उनके विषय में बताया गया है कि ही वॉज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज। क्योंकि जटायु के उदाहरण से हम ये सीखते हैं कि सफलता हम जीते जी क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता। सफलता निर्भर हमारी करती है कि हम अंत समय किसका नाम उच्चारण कर रहे हैं और किसकी सेवा करते हुए हमने हमारे प्राण त्यागे हैं, ये निर्भर करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु श्री राम की सेवा। राम विजय उत्सव का अर्थ है लक्ष्मण और जटायु के उदाहरण को लेते हुए प्रभु श्री राम की सेवा, और वो सेवा भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन इसकी प्रकार होनी चाहिए, स्नेह। आज के इस छोटे से प्रवचन के अंत में मैं आपको कथा सुनाना चाहूंगा, एक कहानी सी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि जब कोई किसी की सेवा करता है, हालांकि बाहरी रूप से भी वो ठीक से सेवा करे, उसमें भी कितने गुण बताए गए हैं। तो ये एक कहानी है एक परिवार की। नवविवाहिता एक महिला इस परिवार में आती है। परिवार अब ये बहू बन चुकी है इस परिवार की, और अक्सर भारत में बहू और सास, सास और बहू का हर समय वो 36 का आंकड़ा रहता ही है ना। तो ये अपने सास से इतनी परेशान, ये बहू इतनी परेशान सास के दुर्व्यवहार से कि दोनों के रोज झगड़े, हर क्षण झगड़े, तो तंग आकर ये बहू ये अपने मायके जाती है और इनके एक वैद्यराज, जो कि इनके परिवार के वैद्यराज, फैमिली डॉक्टर जिसे कहेंगे, तो अपने पारिवारिक वैद्यराज के पास जाती है और कहती है कि ये जो मेरी सास है इसे मुझे मारना है, खत्म करना है जान से। तो कुछ ऐसा जहर आप, कुछ ऐसी जड़ी बूटी निकाल के दो, ऐसा जहर निकाल के दो आपके वैद्यशाला से, जो कि मैं उसको खिलाऊं पिलाऊं और उसको मार डालूं। देखिए कितना द्वेष, कितनी नफरत, घृणा। तो ये जो इनके फैमिली डॉक्टर, ये जो वैद्य, ये गए और इन्होंने कहा कि दो दिन बाद आना, मैं ढूंढ के रखता हूं और एक ऐसा जहर दूंगा कि अवश्य ही ये जहर काम करेगा। तो दो दिन बाद वो फिर से आती है, तो ये वैद्य एक एक हर्ब, एक जहर देते हैं और कहते हैं कि ये जहर तुरंत नहीं मारेगा, क्योंकि तुरंत यदि दोगी और वो मर गई तुम्हारे ऊपर फिर पुलिस केस हो जाएगा और सब शक तुम्हारे ऊपर ही होगा। तो ये जहर ऐसा है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लो पॉइजन, कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते जाओ, रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते जाओ और धीरे धीरे ये जहर बढ़ता रहेगा और फिर एक दिन, एक महीने के बाद वो मरेगी। उसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे इसको मार। परंतु इस वैद्य ने कहा कि एक शर्त है कि ये जहर को तुम्हें अपने हाथों से अपनी सास को खिलाना होगा और बिल्कुल भी शक न आए, इसलिए बहुत प्रेम से खिलाना होगा। तो ये एक महीना तुम प्रेम से खिलाओ वो जहर मिला के किसी में भी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हुए वो खिलाओ। तो अब वो हाँ कि मेरे ऊपर शक नहीं आना चाहिए, तो अब वो ज्यादा, जैसे ही वो वापस जाती है अपने ससुराल, तो अपना ज्यादा प्रेम दिखाते हुए और इतनी सेवा कर रही है, इतना प्रेम दिखा रही है, स्नेह, इतना स्नेह दिखाते हुए सेवा कर रही है, लेकिन वो जहर डाल दे, जहर डाल। तो एक हफ्ता, दो हफ्ता, अब वो सासू माँ आश्चर्यचकित कि अचानक ये इतनी विनम्र कैसे हो गई, इसमें इतना उत्साह कैसे आ गया, इतना स्नेह, जो भी हम पढ़े अभी, कर्मठ प्रयास, इतना निरपेक्ष सेवा कैसे। तो दो हफ्ते बाद फिर ये सासू माँ पूरे परिवार में सबके सामने इसका गुणगान करने लगी कि इतना सौभाग्य कि ऐसी बहू मुझे मिली। अब ये पता नहीं कि वो दो हफ्ते से जहर डाला जा रहा है उसके खाने में, परंतु उसे क्या दिख रहा है, कितने अच्छी सेवा भाव इसका है। अब तीसरा हफ्ता, अब इसने इतना अपना सब कुछ, क्योंकि शक नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, तो इतना अपना स्नेह औपचारिकता से, उसका बाहरी रूप से अपनी सेवा भाव दिखा रही थी, परंतु तीसरे हफ्ते तक उसका भी हृदय परिवर्तित होने लगा, क्योंकि अब इसका व्यवहार सुधर गया, अब इसका हृदय परिवर्तित हो रहा है, दोनों का हृदय परिवर्तित हो गया तीन हफ्तों में। परंतु अब डर क्या है कि चौथे हफ्ता में तो वह जहर असर करके रही, मरने वाली है। तो फिर वो जाती है भागते हुए अपने मायके, वो वैद्यराज को पकड़ती है और कहती है कि कुछ अब ऐसी जड़ी बूटी दो, अब मैं अपने सासू माँ से प्रेम करने लगी हूं, अपनी मां से ज्यादा मैं अब अपनी सासू माँ को प्रेम करती हूं। तो आप कुछ ऐसी जड़ी बूटी दो कि वो जहर निकल जाए शरीर से। तब वैद्यराज कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं था, जो मैंने तुम्हें दिया था वो ऐसी जड़ी बूटी थी कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य और सुधरता, और उसका शारीरिक स्वास्थ्य और सुधर गया, परंतु मैंने एक ऐसा जहर दिया जो कि तुम्हारे अंदर का जो ये वायरस है उसको मार दिया उसने, बैक्टीरिया को। क्या था उसके प्रति? जो द्वेष था तुम्हारा। और वो कैसे मरा? जो तुमने अपना स्नेह पूर्वक जो सेवा की अपने सासु माँ की, वो 3 हफ्ते में। तो बहुत एक प्रेरणादायक एक छोटी सी कहानी है जिससे ये समझ में आता है कि यदि कोई अपने सासु माँ की सेवा भी जहर देते हुए परंतु स्नेह के साथ करे तो उसका भी यदि हृदय पिघल कर उसके प्रति शुद्ध भावना जागृत हो सकती है, तो क्यों नहीं प्रभु श्री राम के प्रति हम स्नेह के साथ, उत्साह के साथ, निरपेक्ष भाव के साथ ऐसे प्रयास करते हुए भावज्ञेन, कृतज्ञेन, धर्मज्ञेन, इन भावनाओं से यदि हम प्रभु श्री राम और सीता देवी इनकी सेवा करेंगे, तो क्यों नहीं प्रभु श्री राम और सीता वो अपनी अहितु की कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे। तो यही आज के इस गुड़ी पड़वा जो उत्सव है, इसका महत्व है राम विजय उत्सव। और उसका महत्व है कि रावण और शूर्पणखा जो हमारे हृदय में जिनके प्रतीक हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करें। लक्ष्मण और जटायु के उदाहरण से लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, उन निस्वार्थ सेवा भाव के द्वारा। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री पंच तत्व की, शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी।
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधेश्याम जय राधा माधव हरे कृष्णा हरे